Going to read Revelation chapter 13, verses 1 to 10. We won't take the time to read these passages both in English and in Hindi, so our brother will just read the passage in Hindi.
समय को बचाने के लिए हम पवित्र शास्त्र में से सिर्फ हिंदी में ही पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय पहले पद से लेकर 10वें पद तक मैं पढ़ रहा हूँ. प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय पहले पद से लेकर 10वें पद तक. और वह समुद्र की बालू पर जा खड़ा हुआ, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे. उसके सींगों पर 10 मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इश निंदा के नाम लिखे थे. जो पशु मैंने देखा वह चीते के सदृश था, उसके पैर भालू जैसे और उसका मुख सिंह के समान था. उस अजगर ने उसे अपना सामर्थ्य, अपना सिंहासन तथा अपना महान अधिकार दे दिया. तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो वो उसके मरने पर हो, और उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया. उस पर सारी पृथ्वी के लोग अचंभा करते हुए उस पशु के पीछे चल पड़े. उन्होंने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने अपना अधिकार पशु को दे दिया था. उन्होंने यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के सदृश कौन है, कौन इसके साथ युद्ध कर सकता है. उसे एक ऐसा मुंह दिया गया जिससे कि वह अहंकारपूर्ण और इष्ट निंदक शब्द बोले, तथा उसे 42 महीनों तक कार्य करने का अधिकार दिया गया. उसने परमेश्वर के विरुद्ध निंदा करने के लिए अपना मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात उनके विरुद्ध जो स्वर्ग में निवास करते हैं निंदा करे. उसे पवित्र लोगों के साथ युद्ध करने और उन पर विजय पाने का अधिकार दिया गया, तथा प्रत्येक कुल, लोग, भाषा और जाति पर उसे अधिकार दिया गया. पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है नहीं लिखा गया है. जिसके कान हो वह सुन ले. वह जो बंदी होने के लिए ठहराया गया है बंदी गृह में डाला जाएगा, और जो तलवार से मारता है वह तलवार से मारा जाएगा. पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास भी इसी में है.
थैंक यू. रीड अ वर्स इन रेवलेशन 17 एज़ वेल प्लीज.
हम प्रकाशित वाक्य 17 में से भी एक भाग को देखेंगे.
एंड रीड वर्स 15 प्लीज सम.
प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय उसके 16वें पद को मैं पढ़ रहा हूं. प्रकाशित वाक्य 17वां अध्याय उसका 16वां पद. और जो 10 सींग तथा पशु तूने देखे वे उस वेश्या से बैर करेंगे, उसे उजाड़ और नग्न करेंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे अग्नि में भस्म कर देंगे.
The Lord bless his word to us again today.
परमेश्वर के वचन को आज हमें आशीषित करके दे.
Now we're turning our attention to what the scripture says about two great personalities that are going to arise.
अब हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से इस विषय पर ध्यान देंगे जहां पर दो महान व्यक्तित्वों को हमसे परिचित कराया जा रहा है.
We have seen that the devil is someone who counterfeits divine things.
हम जानते हैं शैतान वो है जो ईश्वरीय बातों का झूठा या नकली बातों रूप को दिखाता है.
He's a liar and the father of it all.
और वो झूठा है और झूठ बोलने वालों का पिता है.
This morning particularly we thought how he at Babel counterfeited the temple city.
और हमने आज सुबह देखा कैसे बाबेल में उसने उस मंदिर के शहर के नकली रूप को बनाया.
And now in the personalities of these two beasts, we've read about the first of them.
और इन दो जंतुओं हैं जिनमें से पहले को हमने अभी पढ़ा है उस उनके व्यक्तित्व को अगर देखेंगे.
He is going to counterfeit the activities of the triune Godhead.
ये जो पशु है, ये जंतु है, ये त्रिएक परमेश्वर के उस व्यक्तित्व का एक नकली रूप हमारे सामने रखने जा रहा है.
There is one God, but he is three persons.
एक ही परमेश्वर है लेकिन तीन व्यक्तित्व के व्यक्तियों में हम पाते हैं उनको.
The Father himself remains invisible.
और जो पिता है उनको कोई नहीं देख सकता.
Of him it is said,
पिता के बारे में ऐसा कहा गया है,
God whom no man hath seen nor can see.
और वो ऐसा परमेश्वर है जिसको ना कभी किसी मनुष्य ने देखा है और ना देख सकता है.
एंड ही इज द आर्किटेक्ट ऑफ डिवाइन पर्पस.
और वही ईश्वरीय उद्देश्यों को बनाने वाला है या उसका निर्माण करता है.
व्हाट गॉड डिजाइन्स द फादर डिजाइन्स द सन brings into being. He executes the divine will.
पिता परमेश्वर जिन डिजाइंस को बनाता है, रूपरेखा को बनाता है, पुत्र परमेश्वर उसको क्रियान्वित करता है.
And what the Lord Jesus, the Son of God, brings into being, the Spirit of God then energizes.
और पुत्र परमेश्वर जिन बातों को क्रियान्वित करता है और पवित्र आत्मा परमेश्वर उनमें ऊर्जा या शक्ति प्रदान करता है.
In this way, the three of them work together.
इस प्रकार ये तीनों एक साथ काम करते हैं.
They did so at creation.
और सृष्टि में उन्होंने ऐसा ही काम किया था.
The unseen eternal God, the Father, is seen as the Architect of the heavens and the earth.
और जिस परमेश्वर को अनंत काल के परमेश्वर को जिसको हम देख नहीं सकते उन्होंने ही इस सारे आकाश और पृथ्वी का जो डिजाइन है रूपरेखा बनाया है.
But John in his gospel,
यूहन्ना अपने सुसमाचार में,
he says of the Lord Jesus, all things were made by him.
यीशु मसीह के बारे में वो उसका परिचय ऐसा देता है कि सारी बातें उसी के द्वारा बनाई गई है.
Without him was not anything made that was made.
और बिना उसका जिसको हम देखते हैं कोई भी बात नहीं बनाई गई है.
So the Son of God, the Lord Jesus, he has brought into being what the Father designed.
इसलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने जिन बातों को पिता ने रूप दिया था, रेखा रूपरेखा बनाया था, उसको अस्तित्व में ले आया.
But we know in Genesis 1 that when the Lord Jesus spoke and the materials of the universe came into being,
हम जानते हैं उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह के शब्द निकले और पृथ्वी के जो एलिमेंट्स हैं, मटेरियल हैं, वो एक साथ जब आ गए.
एंड दे वर इनिशियली विदाउट फॉर्म एंड वॉइड.
हम जानते हैं कि उनका कोई रूप नहीं था.
जस्ट लाइफलेस मटेरियल.
और बस ऐसे ही ना कोई रूप और ना जीवन के बिना वाला मटेरियल था.
देन द स्पिरिट ऑफ गॉड मूव्ड अपॉन द फेस ऑफ द डीप.
तब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की आत्मा वहां मंडराने लगी.
एंड ही ब्रॉट लाइफ इनटू व्हाट द सन ऑफ गॉड हैड प्रोड्यूस्ड.
और पुत्र परमेश्वर ने जिस चीज को बनाया था उनमें जीवन ले आया.
एंड देन ऑफ कोर्स देयर वाज द फॉर्मिंग आउट ऑफ दोज मटेरियल्स ऑफ द फाइनलाइज्ड हेवंस एंड अर्थ.
और हम जानते हैं उन सारी बातों में से हम जो आकाश और पृथ्वी को देखते हैं वो निर्मित होकर बाहर आया.
इट इज अ सोर्स ऑफ ग्रेट वंडर एंड वर्शिप टू आवर सोल्स.
आज ये सारी बातों को जो हम देखते हैं हमारे प्राण परमेश्वर की आराधना किए बिना, आश्चर्य से भरे बिना नहीं रह सकती.
That the same divine persons,
कि यही ईश्वरीय व्यक्तित्व,
and the same divine power,
और यही जो ईश्वरीय सामर्थ है,
was used for the salvation of your soul and mine.
आपके और मेरे उद्धार के लिए, प्राणों के उद्धार के लिए इसी शक्ति ने, इसी व्यक्ति ने काम किया है.
Are we amazed that the eternal God would call out of nothing the universe?
कि कितना आश्चर्य की बात है कि जहां कुछ नहीं था उसमें से सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इस आकाश पृथ्वी को बनाया.
What did it cost God to do that?
परमेश्वर को ऐसा करने के लिए इसके पीछे का कारण क्या है?
Nothing.
कुछ भी नहीं.
He spake and it was done.
हम पढ़ते हैं उसने कहा और सब कुछ दिखाई देने लगा.
He commanded and it stood fast.
और उसने आज्ञा दी और सब कुछ खड़ा हो गया.
He hangeth the worlds on nothing.
हम पढ़ते हैं कि वो पृथ्वी को ऐसे ही लटकाया हुआ है.
Oh, the greatness of the power of God.
देखिए परमेश्वर के सामर्थ्य की महानता को.
But he couldn't just speak the word and save my soul.
लेकिन अपने शब्दों के द्वारा वह मेरे उद्धार को नहीं कर पाया.
It was necessary for God to give his son.
मेरे और आपके उद्धार के लिए आवश्यक था कि परमेश्वर अपने पुत्र को दे दे.
It was necessary for the son to give his life.
यह आवश्यक था कि पुत्र अपने प्राणों की आहुति दे.
And when Peter would teach me about the greatness of my salvation.
और जब पत्रस मेरे उद्धार की महानता के बारे में मुझे सिखाता है.
He tells me I am elect according to the foreknowledge of God the Father.
हमें वो मुझे इस प्रकार से सिखाता है कि परमेश्वर के जो अंतर जो जो महान ज्ञान है उसके अनुसार उसने मुझे चुना है.
Sanctified by the Spirit unto obedience.
उसने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शुद्धिकरण किया ताकि उसकी आज्ञा में मान सकूं.
And the sprinkling of the blood of Jesus Christ.
और ये प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के छिड़काव के द्वारा संभव पाया.
The same three divine persons were actively involved in the salvation of the soul of this poor sinner.
और यही त्रिएक परमेश्वर इस पापी, इस कमजोर पापी के मुक्ति के लिए इस त्रिएक परमेश्वर ने काम किया.
The Father chose me unto salvation.
पिता ने मुझे उद्धार के लिए चुन लिया.
The work was done by his son, the Lord Jesus Christ at Calvary.
और उस काम को उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने कालवरी के क्रूस पर पूरा किया.
And the life that brings was brought to me by the Spirit of God.
और जो जीवन मुझे मिलता है वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने मुझे प्रदान किया.
Begotten again by the Spirit.
और फिर से आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हो गया.
That's where the life came from, the new life.
और यहीं से हमें नया जीवन आरंभ हुआ है.
But the new life could only come when the son had done the work.
और ये नया जीवन तभी आ सकता है जब पुत्र अपने काम को पूरा करेगा.
And the son did the work in accordance with the will of the father.
और पुत्र ने पिता की इच्छा के अनुरूप अनुसार उस काम को भी पूरा किया.
Three persons, one God.
तीन व्यक्ति लेकिन एक परमेश्वर.
When I was a boy, one of the things we would do in school as the winter months came near.
जब मैं एक छोटा सा लड़का था, जब शीत ऋतु आती थी, तब हम एक विशेष काम किया करते थे.
The time of year when we have long dark nights.
और तब ऐसा होता था कि रात बहुत लंबी होती थी.
We would be told to take to school a bowl.
हमसे कहा जाता था कि हम स्कूल में एक बॉल लेकर जाएं.
And some earth, some soil.
और कुछ मिट्टी लेकर जाए, कटोरा लेकर जाए, मिट्टी लेकर जाए.
And then we would take a particular plant. Now this is something we grow from a bulb, like an onion is a bulb, you know that kind of thing.
हम एक विशेष पौधे को भी लेकर जाते थे, जैसे हमारे यहाँ कांदा होता है.
It's not an onion, but it's like that, you see.
कांदा के समान ही एक पौधे को ले जाया करते थे.
So then maybe about November time.
और ये लगभग नवंबर का महीना होता था.
We would get the bowl, put the soil in it.
हम उस कटोरे को लेते थे, उसमें मिट्टी डालते थे.
And we would bury in that soil this bulb.
और ये कांदा के समान दिखने वाले उस चीज को हम उस मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे.
The name of the plant is hyacinth.
उसका नाम हायसिंथ है उस पौधे का.
So there it is, and I could be walking home from school with this bowl in my hand.
और मैं वापस अपने स्कूल से इस कटोरे के साथ आ रहा हूँ.
And you meet me on the way.
और ऐसा सोच लीजिए आप मुझे रास्ते में मिल रहे हैं.
And you say, what have you got in your bowl?
और आप मुझसे पूछेंगे कि ये कटोरे के अंदर क्या है?
I say, I've got a hyacinth.
मैं कहता था कि इसके अंदर हायसिंथ है.
You say, I can only see soil. I can just see dirt, earth.
तो आप कहेंगे कि नहीं, मुझे तो यहाँ सिर्फ मिट्टी दिखाई दे रही है.
You say, well, it's there.
आप कहेंगे नहीं, यहाँ पे है वो.
So I don't believe it's there.
मैं कहता हूँ कि मैं विश्वास नहीं कर सकता कि यहाँ पे वो रखा हुआ
है. I am telling you, it's there.
मैं आपसे कहता हूँ नहीं, इसके अंदर है सिंध है.
You would need faith to believe it.
आपके पास विश्वास होना चाहिए कि इस बात को माने.
But it's there.
क्योंकि वो वहाँ है.
And if you don't believe it.
अगर आप उस बात पर विश्वास नहीं करेंगे,
then you wait.
तो आप थोड़े दिन इंतजार करिए.
Because in the fullness of time,
क्योंकि जब समय पूरा हो जाएगा,
this invisible bulb,
ये जो है सिंथ, जो छिपा हुआ कांदे के समान जो चीज मिट्टी के अंदर है,
will manifest itself.
वो अपने आप को प्रकट करेगा.
We would go home and put that bowl into a dark cupboard.
और हम उस कटोरे को ले जाते थे और एक अंधेरे से भरे हुए अलमीरा के अंदर रख देते थे.
And the dark months would go by.
और ये जो अंधकार से भरे हुए मंथ महीने बीतते थे.
And the spring season of another year comes.
और उसके बाद दूसरी ऋतु जब आ जाती थी.
And now we take the bowl out of the cupboard.
हम उस कटोरे को उस कबर्ड अलमारा से निकाल लेते थे.
And here before our gaze is a beautiful flower.
हमारी आंखों के सामने एक सुंदर फूल को हम देख पाते थे.
You meet me again.
आप मुझे दोबारा मिल रहे हैं.
I want a word with you. You come with me.
आप मेरे साथ आइए.
And I show you there, and I say, look, what is this?
और मैं उस स्थान पे ले जाता हूँ जहाँ कटोरे को रखा, और मैं आपसे कहता हूँ कि देखो ये क्या है?
Say, oh, beautiful flower.
आप कहेंगे अरे ये तो बहुत सुंदर फूल है.
I say, yes. Can you see the bulb?
मैं उनसे कहता हूँ हाँ, क्या आप उस कांदे को भाग को देख सकते हैं?
No, I still can't see the bulb.
मैं उसको देख नहीं सकता.
But you know about the bulb.
आप उस कांदे के बारे में जानते हैं.
You know it is not an onion.
आप जानते हैं कि वो जो कांदा जो ऑनियन नहीं है.
It is not a rose.
ये गुलाब नहीं है.
It is not a lily.
ये लिली फूल नहीं है.
The flower that is there tells us everything about the character and the nature of the bulb we cannot see.
हम जानते हैं कि वो फूल वो मिट्टी के नीचे छिपे उस वस्तु के सारे गुणों को प्रदर्शित करता है.
The hyacinth bulb can only bring forth a hyacinth.
हायसिंथ बल्ब में से जो जो जो, जो कांदा है उसमें से हायसिंथ की फूल निकल पाती है.
So there is the visible manifestation of the bulb we cannot see.
और वहां पर हम देखते हैं कि जो बल्ब या जो जो कांदा का जो भाग मिट्टी के नीचे दबा है उसका एक प्रकटीकरण को हम वहां पर देखते हैं.
One of the disciples had the same name as I have.
एक शिष्य था जिनका मेरे जैसा ही नाम था, मेरे ही नाम था.
He was Philip.
उनका नाम था फिलिप, फिलिपुस.
And one day he said to the Lord.
एक बार एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा.
With a little bit of frustration in his voice, I think.
मुझे लगता है कि वो बिल्कुल परेशान था.
Why don't you just show us the Father and that will be enough for us?
उसने कहा कि वही प्रभु क्यों तू अपने पिता को हमें दिखा नहीं देता, वही हमारे लिए काफी है.
The Lord said, Philip, have you been so long with me?
यीशु मसीह ने फिलिपुस से कहा, हे फिलिपुस, तू इतना समय मेरे साथ बिताया.
Do you not understand this?
क्या तुम इस बात को समझ नहीं सकते?
He that hath seen me,
जिसने मुझे देखा है,
has seen the Father.
उसने पिता को भी देखा है.
There is nothing about the Father that you can know except you see it in me.
पिता के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम मुझे देखकर जान नहीं पाते.
So we have a bulb.
इसलिए हमारे पास कांदे के समान एक चीज है.
Can't see it.
हम उसको देख नहीं सकते.
But now we have a flower that's come from the bulb.
लेकिन वो मिट्टी के ऊपर हम एक फूल को देखते हैं जो उसमें से निकला है.
And it's beautiful. It tells us everything about the bulb we cannot see.
और उस बीज के बारे में सब कुछ बताता है जिसको हम देख नहीं सकते.
But then after I have shown you this flower,
इस फूल को मैंने आपको दिखाया उसके बाद,
maybe we take it into another room.
हो सकता है हम इसे एक दूसरे कमरे में ले जाएं.
Somebody comes into the first room.
पहले कमरे में तब कोई चला आता है.
Now you see the hyacinth has a beautiful fragrance.
आप देखिए जो hyacinth जो फूल है उसमें से बहुत सुंदर खुशबू आती है.
So after the flower has been taken away,
जब उस फूल को वहां से हम दूसरे जगह ले जाते हैं,
they come in and they smell the air.
और वहां जब आते हैं उनको उस कमरे में सुगंध आता है.
Ah, they say, there's a hyacinth here somewhere.
वो कहते हैं कि अरे इस कमरे में कहीं पे एक हायसिंथ का पौधा रखा हुआ है.
You say, well, it's in another room.
हम मैं कहता हूं कि नहीं नहीं वो दूसरे कमरे में.
Oh yes, but we know about the hyacinth. The fragrance is telling us.
नहीं नहीं यहां पर हायसिंथ है क्योंकि ये खुशबू से मुझे पता चल रहा है.
You can't see the fragrance, but it's real.
हम उस खुशबू को देख नहीं सकते लेकिन है यहां पर.
And the fragrance has the character of the flower.
और ये जो खुशबू में है, ये खुशबू में उस फूल के गुणों को हम पा रहे हैं.
And the flower has the character of the bulb.
और ये जो फूल है उसमें वो बीज के गुण दिखाई दे रहे हैं.
Is the flower the bulb?
क्या वो जो फूल है वो बीज है?
No, it has its own identity.
नहीं, उसका एक विशेष व्यक्तित्व है.
Is the fragrance the flower?
जो खुशबू है क्या वो फूल है?
No, but it has the same character.
नहीं, उनके गुण चरित्र गुण एक हैं.
So we have three things. We have a bulb.
इसलिए यहां पर हम तीन बातों को देखते हैं. एक तरफ एक बीज.
We have a flower.
एक फूल को हम देखते हैं.
We have a fragrance.
और उसके अलावा उसकी एक खुशबू को हम देखते हैं.
Three things.
तीन बातें.
How many hyacinths do we have?
कितने hyacinth है यहां पर?
One.
एक है.
You see, Paul said to the Corinthians, "Doth not even nature itself teach you?"
पौलुस प्रेरित ने कुरिन्थियों के विश्वासियों को कहा, क्या प्रकृति भी तुम्हें नहीं सिखाती, सृष्टि भी तुम्हें नहीं सिखाती?
इवन इन नेचर वी हैव ट्राई यूनिटी ऑफ थ्री थिंग्स.
सृष्टि में भी हम त्रिएकता को देख पाते हैं.
थ्री डिफरेंट थिंग्स.
तीन अलग बातें.
ईच विद देयर ओन आइडेंटिटी.
तीनों के अलग अलग अपनी पहचान.
बट दे आर ऑल वन.
लेकिन ये सारी एक ही है.
नाउ दैट्स द गॉडहेड.
यही है त्रिएकत्व जो परमेश्वर.
द डेविल वांट्स टू काउंटरफीट दैट.
और जो शैतान है बिल्कुल उसकी छाया बनाना चाहता है.
बट इट इज गोइंग टू बी अ पुअर काउंटरफीट.
लेकिन वो एक साधारण सा नकली रूप है.
बिकॉज ही कैनॉट काउंटरफीट द यूनिटी ऑफ द गॉडहेड.
क्योंकि वो परमेश्वर का जो त्रिएकत्व है उसका कोई भी रूप बना नहीं सकता.
दे विल बी थ्री पर्सन्स.
यहां पर तीन व्यक्ति हैं.
बट दे विल नॉट बी अ ट्रिनिटी.
लेकिन वो त्रिएक नहीं होंगे.
नॉट इन द सेंस दैट गॉड इज ट्रिनिटी.
जैसे परमेश्वर को हम त्रिएक कहते हैं.
बट द डेविल इज गोइंग टू कॉपी.
लेकिन शैतान जो है उसकी एक छाया, एक नकली रूप बनाएगा.
ही इज गोइंग टू रिमेन इनविजिबल.
और वो बिल्कुल अपने आप को छुपा के रखेगा.
ही इज गोइंग टू मैनिफेस्ट हिमसेल्फ इन अ मैन.
और वो अपने आप को एक मनुष्य में दिखाई देगा.
एंड दैट मैन इज गोइंग टू बी द बीस्ट वी हैव रेड अबाउट इन रेवलेशन 13.
और यही पुरुष वो पशु होगा जिसके बारे में हमने प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में पढ़ा.
द डेविल हैज द टाइटल ऑफ द ड्रैगन.
और शैतान को अजगर का नाम दिया गया है.
He's taking the place of the father.
वो पिता का जगह ले रहा है, स्थान ले रहा है.
He's the originator of the plan.
जो इस सारे योजनाओं को बनाने वाला है.
And he's going to energize this man who is called the beast.
और ये जो पशु, जो मनुष्य, जो पशु है उसको वो सामर्थ देगा.
And he's going to use him as the personification of himself.
और वो उसको अपना व्यक्तित्व दिखाई देने वाले व्यक्तित्व के रूप में पेश करेगा.
But just as the work of the Holy Spirit today,
लेकिन जैसा पवित्र आत्मा का काम आज हो रहा है,
is to lead men to Christ,
ताकि लोगों को मसीह के पास ले आए,
to bring men to a knowledge of Christ,
लोगों को प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में ले आए,
so the false prophet,
वैसे ही जो झूठा भविष्यवक्ता है,
the second beast of Revelation 13,
जो प्रकाशित वाक्य 13 में कहा गया दूसरा पशु है,
he is going to bring men to worship the first beast.
वो लोगों को पहले जो पशु है उसकी आराधना करने के लिए ले आएगा.
And by worshipping the first beast, they're going to be worshipping the devil himself.
और जब पहले पशु की आराधना यहाँ पर लोग करेंगे तो लोग अजगर की या शैतान की आराधना करेंगे.
And that's what he wants so much.
और यही चीज वो चाहता है, अजगर शैतान.
He wants to be as God.
वो परमेश्वर के समान बनना चाहता
है. Isaiah 14.
जैसा यशायाह नबी की पुस्तक 14 अध्याय में पढ़ते
हैं. He craves the worship of man.
वो मनुष्य की आराधना को चाहता है.
That's what these personalities are about.
और ये जो व्यक्तित्व हम यहाँ पर देखते हैं इसी सत्य को हमारे सामने ला रहे हैं.
It is the conclusion of the devil's attempt to establish his kingdom in this world.
ये शैतान का इस पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना के लिए अंतिम प्रयास है.
And he's going to bring his man onto the world stage.
और इस प्रकार से वो अपने पुरुष को, अपने मनुष्य को पृथ्वी के सामने, लोगों के सामने ले आएगा.
And it's going to be destroyed.
और सब कुछ समाप्त हो जाएगा.
Now, that's the broad picture.
और यही चित्र को इस अध्याय में हम पाते हैं.
We read the verse in Revelation 17.
प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में हमने इस एक पद को पढ़ा.
The waters that you saw, the angel said to John, the waters that you saw are peoples and multitudes and nations and tongues. Verse 15.
यूहन्ना को पवित्र आत्मा ने स्पष्ट स्वर्गदूत ने यह बताया, जल तूने देखा वो तो लोग, भीड़, जातियां और भाषाएं हैं.
सो द स्क्रिप्चर एक्सप्लेन्स इटसेल्फ व्हाट द सी इज अ सिंबल ऑफ.
इसलिए शास्त्र में से जल या समुद्र क्या है इसके बारे में उसके अर्थ को भी हम पाते हैं.
इट्स अ सिंबल ऑफ द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड.
ये संसार के सारे देशों का एक चित्र है.
एंड दिस बीस्ट कम्स अप आउट ऑफ, वी आर इन रेवलेशन 13 वर्स 1 नाउ.
और यह पशु उठकर प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में कुछ कहता है.
This beast rises up out of the sea.
यह पशु समुद्र में से निकलकर आया.
So now it is speaking about a man.
इसलिए अब ये एक मनुष्य के बारे में कह रहा है.
A real man.
एक वास्तविक मनुष्य.
And he is going to rise up out from among the Gentile nations.
और ये व्यक्ति जो है अन्य जातियों की जो देश उसमें से निकल कर आएगा.
And this is the man who is going to be the world ruler in the kingdom of Satan.
और यही पुरुष, यही व्यक्ति शैतान के राज्य में विश्व पर राज्य करने वाला व्यक्ति बनेगा.
I believe very sincerely.
मैं पूर्ण मन से यह विश्वास करता हूं.
That the man of sin, as he is also called.
कि यह जिसका नाम पाप का मनुष्य है.
The beast.
जो पशु है.
And depending on your viewpoint, also the Antichrist.
और आपके विचारों के अनुसार जो मसीह विरोधी है.
That this man, I believe very sincerely, is in all probability alive today.
मैं यह पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये पुरुष, ये व्यक्ति आज जीवित होना चाहिए.
But before we start speculating as to who he might be,
लेकिन ये कौन हो सकता है इसके बारे में हम विचार करने के पहले,
we need to understand this. He does not know himself.
हम ये जान ले कि वो स्वयं अपने बारे में बिल्कुल नहीं जानता.
That he is the man of sin.
कि वही पाप का मनुष्य है.
You see, there isn't some kind of freaky character out of a movie somewhere.
कई बार वो जैसे पिक्चरों में दिखाने वाले कोई विशेष चरित्र नहीं है.
There isn't a man in an office somewhere who looks into a mirror and says, "Ha ha, I'm the man of sin and my day is coming."
क्योंकि ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने ऑफिस में आईने में देखकर कहेगा, अरे वही मैं पाप का मनुष्य हूं, मेरा दिन आ रहा है.
He doesn't know he's the man of sin.
क्योंकि उसको मालूम नहीं है, उस व्यक्ति को मालूम नहीं है कि वो पाप का मनुष्य है.
He will be a politician.
वो हो सकता है वो एक राजनीतिज्ञ है.
And he will come out of the system of things which is the revival of that Roman Empire that faded but never ended.
वो उस विश्व प्रणाली में से निकल कर आएगा जो रोम के साम्राज्य को दिखाता है जो समाप्त नहीं हुआ है लेकिन खत्म हुआ, कुछ समय के लिए रुका हुआ है.
He's a man who has power.
यह व्यक्ति के पास बहुत सामर्थ होगा.
We are told that he has seven heads and ten horns, and upon those horns ten crowns, and upon his head the name of blasphemy.
हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि उसके दस सिंह और सात सिर थे, उसके सिंगों पर दस मुकुट थे तथा उसके सिरों पर इष्ट निंदा के नाम लिखे थे.
And verse 2 tells us that he bears the characteristics of those empires that were the subject of Nebuchadnezzar's dream.
और यहां पर हम पढ़ते हैं कि इसमें वो चरित्र दृश्य हम पाते हैं जहां पर नबूकदनेस्सर ने जो स्वप्न देखा था उसमें जिन साम्राज्यों के बारे में कहा गया था उनको हम यहां पर पाते हैं.
सो दिस मैन इज गोइंग टू बी द प्रोडक्ट ऑफ द होल हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड एम्पायर.
इसलिए ये जो व्यक्ति निकलकर आएगा विश्व इतिहास के ये जो साम्राज्य थे उनमें से ही वो निकलकर आएगा.
देयर हैव बीन सम examples in the past.
पिछले सदियों में हमने कुछ उदाहरणों को देखा है.
I suppose Nebuchadnezzar was the first.
मुझे ऐसा लगता है नबूकदनेस्सर एक चित्र था.
His empire ruled the world.
उसका साम्राज्य पूरे पृथ्वी पर फैला हुआ था.
And he ruled the empire.
और उस साम्राज्य का शासक था.
So he was a world ruler.
इसलिए वो एक विश्व साम्राज्य का शासक था.
And other great kings who came after him were the same.
और उसके बाद आए हुए कई जो शासक हैं बिल्कुल उसी के समान थे.
Alexander the Great was another one.
सिकंदर महान एक दूसरा शासक था जो विश्व शासक था.
More recently we have had Napoleon and we've had Hitler.
कुछ समय के पहले हमारे पास नेपोलियन थे और हिटलर भी था.
Men who didn't have world dominion but they were seeking it.
जो विश्व शासक तो बन नहीं पाए लेकिन उसकी कामना कर रखते थे.
And they all sought it by violence.
और वे इन सारे बातों को प्राप्त करने के लिए अत्याचार का प्रयोग किया.
They all sought it by warfare.
और इन्होंने इसको हासिल करने के लिए युद्ध लड़ा.
But the true man of sin,
लेकिन जो वास्तविक पाप का मनुष्य है,
he's going to be different from them because he's going to come peaceably.
और वो इन सारे लोगों से अलग होगा क्योंकि वो शांति का दूत बनकर आएगा.
The world hated Napoleon.
हम जानते हैं कि सारा विश्व नेपोलियन से घृणा करता था.
And they hated Hitler.
और हम जानते हैं हिटलर से भी सारा विश्व घृणा करता था.
But they're going to like this man.
लेकिन सारा विश्व इससे प्रेम करने लगा इस व्यक्ति से.
Now I'm going to speak very carefully, so listen very carefully.
मैं बहुत ध्यान से कुछ विषयों को बताने जा रहा हूं. बड़े ध्यान से इन बातों को सुने.
I am definitely not saying that the new American president is the man of sin.
मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं कि जो अभी नया अमेरिकन प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति वो पाप का मनुष्य है.
But I also believe this.
लेकिन मैं ये भी विश्वास करता हूं.
He could be.
वो हो भी सकता है.
He could be.
वो हो भी सकता है.
I don't know of any reason why he should be disqualified from it.
मेरे पास ऐसा कोई भी कारण नहीं है जिसके कारण हम वो ये पदवी को ना ले इसके लिए इसे हम उसे दूर रखें.
Say, well, brother, America is not there in prophecy, is it?
आप कहेंगे कि भाई देखो अमेरिका तो प्रोफेसी में है नहीं.
No, it's not. And for the simple reason, I believe, that America was never a nation in the Bible.
इसके लिए मैं इस प्रकार से कह रहा हूं क्योंकि बाइबल में कहीं पे भी अमेरिका को एक राष्ट्र के रूप में हम नहीं पाते.
It is a nation today, a powerful nation.
आज वो एक शक्तिशाली राष्ट्र है.
But even as this new president was giving his inaugural address,
लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा जो अमेरिका के राष्ट्रपति अपने प्रारंभिक भाषण को दे रहे थे,
he himself said, we are not one people, we're many people.
उन्होंने एक शब्द ऐसा कहा कि हम एक जाति नहीं, हम तो अनेक जाति है.
We're not one religion, we're many religions.
उन्होंने एक शब्द ऐसा भी कहा हम तो एक धर्म नहीं, हमारे तो अनेक धर्म है.
He was praising the mixture of cultures and people as being the strength of that nation.
वो अपने देश की प्रशंसा के लिए एक कारण जो बता रहा था वो था कि हम यहाँ पर कई धर्मावलंबी और कई जातियों के लोग इस देश में रहते हैं.
So it is a nation in man's eyes.
इसलिए मनुष्यों की दृष्टि में ये एक राष्ट्र है.
It's not a nation in God's eyes.
लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अमेरिका एक राष्ट्र नहीं है.
It's not a biblical nation.
वो पवित्र शास्त्र के अनुसार एक राष्ट्र नहीं है.
Politically, militarily, in every way it is allied to the west, to the European powers.
अगर आप राजनीतिक दृष्टि से देखेंगे या युद्ध सामर्थ्य की दृष्टि से देखेंगे तो हम पाते हैं कि वो हमेशा पश्चिम देशों के साथ संबंध में जुड़े हुए हैं.
So for purposes of prophecy I believe that the United States is just seen as an extension of that Roman Empire.
इसलिए भविष्यवाणी के तथ्यों को अगर हमें समझना है तो हम इस बात को जान सकते हैं कि अमेरिका का जो राष्ट्र है पश्चिम राष्ट्रों से किसी ना किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है.
It is just, it is possible. That's all I'm saying. It is possible.
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये है लेकिन ये संभव है.
that the man who is now president of the USA,
कि ये व्यक्ति जो आज अमेरिका का राष्ट्रपति होकर नियुक्त किया गया है,
he's very different from all the others, isn't he?
वो अभी तक जिसको हम देखते हैं सबसे अलग है.
He's vigorous.
वो उसमें जोश है.
So eloquent.
और अब उनकी उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत है.
Appeals to all the people.
और उसके शब्द लोगों को अपनी ओर खींचते हैं.
Very good mind.
उसका दिमाग बहुत तेज चलता है.
He is probably one of the best politicians in the world today.
आज विश्व में एक तरह से कहें तो सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक है.
Now what is going to be proved in the man of sin is this.
और पाप के मनुष्य में जो बातें हमें दिखाई देगी वो ये है.
That since Adam sinned,
कि जब से आदम ने पाप किया है,
no man has been able to bear the responsibility of earthly dominion.
आज तक एक भी पुरुष, एक भी व्यक्ति विश्व के ऊपर अपने अधिकार को चलाने के उस भार को सह उठा नहीं पाया है.
There is no man capable of bearing especially universal rule without it corrupting him.
ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो विश्व शासन का अधिकार अपने ऊपर लेकर भ्रष्ट ना हो जाए.
We had Prime Minister Blair for 10 years.
हमारे पास इंग्लैंड में प्रधानमंत्री ब्लेयर थे जो 10 साल उन्होंने शासन किया.
When he became Prime Minister, I believe he was very, very sincere in wanting to clean up government and to get fair, equitable government for the nation.
जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने न्याय संगत रूप से शासन चलाने के लिए सारा प्रयत्न किया था.
But after 10 years,
लेकिन 10 वर्ष के पश्चात,
we had the undignified spectacle,
हमने लज्जाजनक कुछ बातों को देखा,
of a man seeking to hold on to power at all costs.
एक व्यक्ति जो हर कीमत पर शासन पर अपने जोर को लगाए रखना चाहता था.
It had changed him.
शासन और अधिकार ने उसे बदल दिया.
Power had corrupted him.
जो ताकत आती है अधिकार के साथ, उसने उसे भ्रष्ट कर दिया.
You see, even the best of men, they can't bear it.
देखिए, अच्छा से अच्छा मनुष्य भी जब ये शासन का अधिकार उनके हाथ में आता, उसे उसके भार को संभाल नहीं पाते.
There is it's not a biblical proverb, but it is a true one.
ये एक बाइबल पर आधारित एक सूक्ति नहीं है, लेकिन एक सच्चाई है.
Absolute power corrupts absolutely.
संपूर्ण अधिकार संपूर्ण रूप से भ्रष्ट बना देता है.
You see, you have some little functionary in your civil service.
ऐसा देख लीजिए, जो हमारे जो शासन है उसमें एक जो अधिकारी होता है,
small job.
वो छोटा सा काम कर रहा है.
He wants a bribe for doing it. You want something from him, you have to pay him bribe.
आप उससे कुछ काम करवाना चाहते हैं, वो कहेगा कि टेबल के नीचे से कुछ दे दो.
His price, 100 rupees.
कितना रुपया मांगता है आपसे? 100 रुपये इस काम को करने के लिए.
His boss, 1000 rupees.
उसका जो बॉस है वो 200 रुपये लेता है.
And the boss of that man, you have to pay 5000 rupees.
उसका उच्च अधिकारी जो है और 500 रुपये लेता है.
When he becomes a minister, you have to pay him 1 lakh.
जब वो मंत्री बन जाता है तो आपको उसे 1 लाख काम करवाने के लिए देना पड़ता है.
You want to bribe the top men, you need a crore at least.
और सबसे ऊपर जो बैठा है उससे कुछ काम करवाना है तो 1 करोड़ के ऊपर बोली लगती
है. See, the more power, the more greed.
इसलिए जितना हमारी ताकत बढ़ता है उतना लोभ बढ़ता है.
More greed, more corruption.
और जितना लोभ बढ़ता है लोग उतने भ्रष्ट होते जाते हैं.
And power is to these men like alcohol. It's they need it and it fires them up and they have to have it.
और जब इन व्यक्तियों को अधिकार का ताकत मिलता है तो ये शराब के समान है, वो और पाना चाहते हैं, और पाना चाहते हैं.
The scriptural description of the man of sin, the beast, this world ruler.
और पवित्र शास्त्र में ये जो पशु है, जो पाप का मनुष्य है, उसके बारे में ऐसा कहा गया है,
इज दैट ही स्टार्ट्स ऑफ एज अ पॉलिटिशियन,
कि वो एक राजनीतिज्ञ के समान आगे आता है,
आउट फ्रॉम द जेंटाइल नेशंस,
और वो अन्य जातियों के देश से निकलता है,
मोर सक्सेसफुल देन द अदर्स,
और वो अन्यों से कई गुना आगे बढ़ गया है,
एंड ही इज सो सक्सेसफुल दैट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वांट्स हिम टू बी देयर लीडर,
और वो इतना सफल हो गया है कि सारी दुनिया चाहती है कि वो उनका शासक बन जाए.
द वर्ल्ड इज वर्चुअली नाउ इन अ कंडीशन वेयर इट इज लुकिंग फॉर दैट.
वास्तविक रूप से आज पृथ्वी, आज संसार ऐसी एक परिस्थिति में पहुंच गए जहां पर लोग एक 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 विश्व शासक की ओर देख रहे हैं.
ऑलमोस्ट एवरी नेशन नाउ इज हैविंग टू नेशनलाइज इट्स बैंक्स.
आज हम जानते हैं कई राष्ट्रों ने जब ये आर्थिक तंगी आए तो जो बैंक्स हैं उनको नेशनलाइज कर दिया है.
That means the international banking market will have to become one.
इसका ये अर्थ हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो बैंक का जो मार्केट है उन्हें एक होना पड़ेगा.
That means you need one strong leader to control that.
इसका यह अर्थ हुआ कि इसका नियंत्रण करने के लिए एक शक्तिशाली अधिकारी या शासक का आना आवश्यक है.
So the man of sin is going to be like, that's all I'm saying, like the new American president.
इसलिए जो पाप का मनुष्य है वो अभी के जो नए अमेरिका राष्ट्रपति है उनके समान उसको बनना होगा.
Popular,
जो बहुत प्रसिद्ध है.
So far anyway.
अभी तक तो वो काफी प्रसिद्ध है.
Strong,
काफी ताकतवर है.
Articulate,
और इतना ही नहीं कोई भी काम करने की उसमें सामर्थ्य है.
Decisive,
और इतना ही नहीं निर्णय लेने की शक्ति भी उसमें.
What will launch this politician onto the world stage? What will really bring him before the eyes of the world?
और इस राजनीतिक को ऐसी कौन सी बात है जो विश्व के सामने ले आएगी?
The rapture.
और वो होगा विश्वासियों का उठा लिया जाना.
That's going to be a big event, isn't it?
वास्तविक रूप से एक बहुत बड़ा एक संभव होगी, घटना होगी.
I don't know how many of the world's population are going to be taken to heaven at the rapture.
मुझे नहीं मालूम कि विश्व में कितने लोग इस पृथ्वी से प्रभु जब आएंगे तो उठा लिए जाएंगे.
I suppose it's going to be many crores of people.
लेकिन मेरा ये विश्वास है करोड़ों लोग उठा लिए जाएंगे.
And let's just assume that, I don't know, let's take a percentage, 20%. Let's take 20%.
ऐसा सोच लीजिए, ये मुझे मालूम नहीं, शायद 20%.
Let's say that 20% of the believers who are taken to heaven,
20% विश्वासी जो स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे,
that they have a job,
उनको एक काम है.
And that those same 20% of believers have a house.
और ये 20% जो विश्वासी उठा लीजिए, उनका यहाँ पर एक घर है.
They're all going to be left behind.
और ये सारी बातें यहां छूट जाएंगी.
Not the believers, the jobs and the houses.
विश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे घर और हमारी नौकरियां छूट जाएगी.
It's all going to be there suddenly.
और ये ऐसा ही रहेगा यहां पर.
So then, it's going to take a very shrewd, decisive politician.
इसलिए एक चालाक तीव्र बुद्धि से काम करने का एक राजनीतिज्ञ का वहां दिमाग चलेगा.
To deal with the aftermath of the rapture.
विश्वासियों के उठा ली जाने के बाद जो हल्ला मचने वाला है उसके लिए ऐसे एक व्यक्ति की जरूरत है.
I don't know how many believers will be driving cars when the rapture happens.
मुझे नहीं मालूम कितने विश्वासी कार चलाते रहेंगे जब प्रभु हमें उठा लेगा.
But those cars will crash.
वो कार एक्सीडेंट हो जाएंगे.
Oh, you might say, I thought that maybe God would bring them safely to the side of the road and stop them.
आप सोचेंगे कि मैं ये सोच रहा था कि शायद परमेश्वर मेरे कार को बड़ा संभाल के रोड के किनारे खड़ा कर देगा.
He could do that.
वो कर सकता है.
But why should he? Because he's now at war with this world.
लेकिन वो अब क्यों करेगा? क्योंकि जब उसके लोग उठा लिए गए, वो तो पृथ्वी से युद्ध करने जा रहा है.
He's taken his church home.
उसने अपनी कलीसिया को ऊपर उठा लिया है.
Now God is starting to act in judgment.
अब परमेश्वर न्याय में काम करने जा रहा है.
There's going to be a lot of accidents, a lot of damage.
बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे, बहुत सारी हानि होगी पृथ्वी पर.
That's on the negative side.
वो हम उसके जो बुरे बात है उस बात को देख
रहे हैं. But then there's going to be lots of houses and jobs and cars that didn't crash and money in banks.
लेकिन बहुत से लोगों के घर होंगे विश्वासियों के, बहुत से विश्वासियों के कार होंगे, बहुत से विश्वासियों के पैसे होंगे जो बैंक में हैं.
The politician who coordinates the aftermath of the rapture.
और विश्वासियों के उठा लिए जाने के बाद जो राजनीतिज्ञ इन बातों को पूरा करेगा या संभालेगा.
With one stroke, he will probably eradicate homelessness and joblessness.
मैं ये विश्वास करता हूँ कि एक ही पल में वो बहुत लोगों को नौकरी दिलवा देगा, बहुत लोगों को घर भी दिलवा देगा.
Who will get the credit for everybody having job and home?
अब सबको घर मिल गए, बहुत लोगों को नौकरी मिल गई, अब इसकी जी प्रशंसा किसको मिलेगी?
He will.
उस राजनीतिज्ञ को मिलेगी.
And the world will want him to be their ruler.
और सारा विश्व करेगा कि यही हमारा शासक बन जाए.
The men of Galilee were like that in John chapter 6 when the Lord Jesus fed them.
और गलीली के जो लोग थे वो बिल्कुल ऐसे ही थे जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें खिलाया.
And when they saw that there was a man who would feed them and they didn't have to work for their own bread, they said, come, let us make him a king.
जब उन्होंने देखा कि अरे ये देखो इस पुरुष को ये जब रहे हमारे साथ रहेगा हमें खाने के लिए मेहनत नहीं करेगा मुफ्त में खाना मिलेगा चलो हम इसको अपना राजा बना लें.
And the power of the man of sin will increase.
और जो पाप का मनुष्य उसकी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी.
Then he will do what two American presidents have tried to do and failed.
तब वो उस काम को करेगा जो दो अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने करने का प्रयत्न किया लेकिन वो पराजित हो गए.
प्रेसिडेंट जिमी कार्टर,
अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर,
प्रेसिडेंट रॉनी रेगन
और राष्ट्रपति रेनाल्ड रेगन,
बोथ ऑफ दोज मेन वर सिटिंग एट अ टेबल.
ये दोनों एक बार एक भोजन एक टेबल के पास बैठे हुए थे
कैंप डेविड,
और कैंप डेविड में,
एंड दे वर रेडी टू साइन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल a peace settlement with the Arabs.
और वो इज़राइल के प्रधानमंत्री के साथ एक वाचा पर संधि लगा पर हस्ताक्षर करने वाले थे जो फिलिस्तीनों के संबंध में था.
Now you know these ceremonies are the result of a lot of work.
आपको मालूम है कि ये भी जो भी ये लोग ये जो मीटिंग बैठते हैं इसके पीछे बहुत प्रयत्न होता है.
You know the president doesn't phone the prime minister and say are you free next weekend.
क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रपति दूसरे देश के प्रधानमंत्री को बुलाकर ये नहीं पूछते कि क्या आप अगले हफ्ता आप खाली हैं.
Would you like to come and stay with me and we'll have a steak and then we'll sign a peace settlement.
क्या आप अगले हफ्ता आ सकते हैं यहां पर और हम दोनों एक जगह बैठकर उस संधि पर हस्ताक्षर करेंगे.
Oh no, it doesn't work like that.
ऐसा कुछ काम होता नहीं है.
For two, maybe three years before,
दो तीन साल तक
स्टाफ आर वर्किंग.
ये लोग इस मीटिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं.
Constant work is going on behind the scenes.
और पीछे छुपे हुए लोग काम कर रहे हैं इस संधि के लिए.
Lots so much of dealing and arguing one with the other.
और इसके लिए बहुत सारे बातचीत होती है. लोग वाद विवाद में फंसते हैं.
ड्राफ्ट नंबर वन, ड्राफ्ट नंबर टू, ड्राफ्ट नंबर थ्री.
उसके बाद वो पहला ड्राफ्ट लिखते हैं, दूसरा ड्राफ्ट लिखते हैं, तीसरा ड्राफ्ट लिखते हैं.
And only when it's all ready,
जब ये सारी बातें विचार विमर्श के बाद तैयार हो जाती
है, when all the work has been done,
जब सारा काम हो जाता है,
then the president takes out his pen.
तब राष्ट्रपति अपने पेन को लेता है.
That's how it works, isn't it?
और इस प्रकार से काम होता है.
So you can imagine how much work had gone in the Carter administration and the Reagan administration to sign a peace settlement.
इसलिए आपको अब मालूम हो गया क्या कि जब कार्टर राष्ट्रपति थे और रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति थे अधिकारियों ने कितना प्रयास किया था कि इस संधि पर हस्ताक्षर हो.
Now they're sitting there.
अब यहां पर बैठे हुए मेज पर
two men.
दो व्यक्ति.
Each of them got a pen.
दोनों के हाथ में एक पेन है.
It didn't happen.
लेकिन वो हुआ नहीं.
After all that work, it didn't happen.
इतना मेहनत करने के बावजूद भी वो हस्ताक्षर नहीं हो पाया.
It was called off.
उनको वापस जाना पड़ा.
Not once.
एक बार नहीं.
Twice.
दो बार.
Why?
क्यों?
What was the basic reason why it didn't happen?
ये हस्ताक्षर क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे क्या कारण है?
Because the church is still on earth.
क्योंकि कलीसिया अभी भी पृथ्वी पर है.
This is the reality of prophecy.
ये है भविष्यवाणी की जो वास्तविकता है.
Because Daniel in his prophecy tells us that this man is going to be responsible for the signing of a peace agreement with Israel.
क्योंकि दानियल अपनी भविष्यवाणी में हमें लिखकर बताता है कि यह व्यक्ति इज़राइल के साथ शांति की संधि बनाने के लिए वो जिम्मेदार होगा.
But he can only do it when the church is in heaven.
लेकिन वो संधि पर हस्ताक्षर तभी कर पाएगा उस कागज पर जब कलीसिया यहां से उठा ली जाएगी.
President Bush has been trying it.
राष्ट्रपति बुश ने बहुत प्रयत्न किए इसके लिए.
सेक्रेटरी राइस, कॉन्डोलीज़ा राइस, शी हैज बीन वर्किंग सो हार्ड फॉर अ मिडल ईस्ट सेटलमेंट.
और हम जानते हैं कि अमेरिका की जो विदेश सचिव है कॉन्डोलीज़ा राइस, ये बार बार फिलिस्तीन देश में जाती थी.
नाउ शी इज हिस्ट्री.
हाँ, वो इतिहास बन गई है.
ही इज हिस्ट्री.
और बुश भी इतिहास बन गया है.
स्टिल नो सेटलमेंट.
अभी तक उनके बीच में कोई संधि नहीं हो पाई है.
व्हाई?
क्यों?
वी आर स्टिल हियर.
क्योंकि हम लोग अभी भी यहां हैं.
But you see, if men are that close to it,
अब देखिए मनुष्य अगर इस प्रयास में इतना करीब आ गया है,
how much closer is it the coming of the Lord to take us home?
तो यीशु मसीह हमें घर ले जाने के लिए आने का समय कितना करीब हो गया है?
It's going to be wonderful, isn't it, brethren?
भाइयों, कितना रोचक बात है ये.
To think that in the whole of the church age,
कि कलीसिया के सारे युग में
2000 years,
2000 वर्ष हो गए.
By the grace of God, we are probably the believers who are going to be alive and remain when the Lord comes to the end.
परमेश्वर के अनुग्रह में हम वो विश्वासी हैं जो प्रभु आने पर जीवित उसके पास उठा लिए जाएंगे.
When the Lord comes to the air and the dead in Christ rise first.
जब प्रभु यीशु मसीह मध्याकाश में आएंगे और जो मरे हैं वो पहले जी उठेंगे.
And they which are alive and remain caught up together with them.
और हम जो जीवित हैं उसके साथ उठा मध्य हवा में उठा लिए जाएंगे.
Then shall be brought to pass the scripture, O death, where is thy sting?
तब हम इस इन आवाज को पवित्र शास्त्र में से देखते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंक कहां?
O grave, where is thy victory?
हे कब्र तेरा विजय कहां?
And when the church is caught home.
और जब कलीसिया अपने घर में उठा लिया जाएगा.
It is as though we will be able to look back to the earth.
कि हम नीचे पृथ्वी की ओर देखेंगे.
And we who were alive and remained when the Lord came.
और हम में से हर एक जो जीवित था जब प्रभु यीशु मसीह आया.
We will be able to say, O death, where is thy sting? We never felt it.
हम चिल्ला कर कहेंगे, हे मृत्यु, तेरा डंक कहां गया?
But those who had died in Christ and have now been raised.
लेकिन जो अब मसीह में मर गए हैं और अब जो जीवित हो उठे हैं.
They'll be able to look back and say, O grave, where is thy victory?
वो नीचे देखकर कहेंगे कि हे कब्र तेरा विजय कहां?
Every believer in the Lord Jesus taken home in a moment.
प्रभु यीशु मसीह में हर एक विश्वासी पल भर में क्षण भर में मसीह के साथ उठा लिया गया.
And the tremendous effect that will have upon this world will launch, I believe, this politician to the very forefront of the world's attention.
और मैं ये विश्वास करता हूं कि इस घटना के कारण पृथ्वी में जो हलचल मचेगी वो इस राजनीतिज्ञ को विश्व के सामने उठाकर दिखाएगा.
It seems that strangely he will actually be tough on crime.
लेकिन एक बात जो यहां पर सबसे सामने आती है कि यह व्यक्ति जो अत्याचार है या बुराइयां हैं उस पर बड़ा कड़क रुख अपनाएगा.
This world so much needs discipline.
और इस काम के लिए अनुशासन की बहुत आवश्यकता है.
Again, with respect, I speak respectfully, but look at your own nation.
मैं बड़े इज्जत के साथ कह रहा हूं, सम्मान के साथ कह रहा हूं, अपने देश को देख लीजिए.
You have laws for the roads.
आपके लिए सड़क के लिए नियम बने हुए हैं.
People don't obey them.
लेकिन मैंने देखा कि लोग उसका पालन नहीं करते.
And the police don't enforce them.
और पुलिस वाले भी जोर नहीं लगाते इस पर.
And then if they do enforce them, you can bribe them to forget about it.
अगर वो लोग कानून नियम बताते हैं तो आप कुछ पैसे देकर उसमें से बच सकते हैं.
It seems that the man of sin will clean all this up.
लेकिन मैं विश्वास करता हूं पाप का ये मनुष्य सारी बातों को बंद कर देगा.
He will be a strong politician who will say to people, now listen, you can't live like this, you've got responsibilities.
वो एक शक्तिशाली शासक होगा जो लोगों से कहेगा तुम ऐसा कर नहीं सकते, तुम्हें जिम्मेदारियां हैं कुछ.
And people will say, you know, he's right.
लोग कहेंगे कि हाँ ये जो कह रहा है वो सच है.
And he will actually crack down on crime and disorder.
और विशेष रूप से वो जितनी हत्या और बुराइयां हो रही हैं उस पर वो कड़क पेश रुख अपनाएगा.
And there will be a period on earth, short, but there will be a period on earth where it seems that the peace that the world is looking for has come.
और पृथ्वी पर कुछ दिनों के लिए ऐसा माहौल हो जाएगा जहां पर लोगों को लगेगा कि पृथ्वी पर संसार में शांति आ रही है.
He's such a good man.
वो इतना एक अच्छा पुरुष होगा.
He's such a clever man.
वो इतना बुद्धिमान व्यक्ति होगा.
He's got rid of joblessness and homelessness and wars and he's solved this whole problem of the Middle East.
और देखो जिनको नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल गई, जिनके पास घर नहीं थे अब उनके पास घर हो गए, और इतना ही नहीं मध्य पूर्व में जो समस्याएं थी वहां पर शांति बहाल हो गई है.
And for the first 3.5 years, the first half of the tribulation period.
और महापीड़ा काल दौर के पहले 3.5 वर्ष में.
He will simply be a politician who is increasing in power and strength of world rule.
वो एक राजनीतिज्ञ रहेगा जो ताकत में फिर पृथ्वी पर ताकत शासन करने में अपनी ताकत को धीरे 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 बढ़ाता रहेगा.
Mind you, he'll be ruthless.
मैं आपको बताना चाहता हूं वह बहुत कड़क होगा, कठोर होगा.
He will say that for the sake of the good of the majority.
वो इस प्रकार से कहेगा कि जो बहुसंख्या है उनकी भलाई के लिए.
Some minorities will have to be persecuted.
कुछ जो अल्पसंख्यक हैं उनको परेशानियों से गुजरना पड़ेगा.
And the majority will turn a blind eye to it. They don't want to know.
और जो बहुसंख्यक हैं वो अपनी आंखों को बंद कर लेंगे.
So long as it's making a better life for me and a better world for my children, I don't care. Get rid of that minority.
जहां तक मेरा जीवन अच्छा हो, मेरे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, ये जो न्यून अल्पसंख्यक हैं उनको कुछ भी होने दो.
This was Hitler's dream for a new order of things.
और हम जानते हैं हिटलर के दिल में भी ऐसे ही विचार थे.
It wasn't only the Jews he tried to get rid of.
उसने न केवल यहूदियों को खत्म करने की इच्छा रखी.
The gypsies of Central and Eastern Europe he tried to get rid of.
और हम जानते हैं मध्य यूरोप के जो जिप्सीज हैं जो उनको भी उन्होंने खत्म करना चाहा.
Children with birth defects.
और बच्चे जिन जो जो अपंग थे
a big tragedy, but get rid of them.
उनको वो खत्म कर देता था.
This world is becoming like that.
और ये पृथ्वी ऐसा ही है, विश्व ऐसा ही हो रहा है.
You know, in my country now,
आपको मालूम है मेरा देश, मेरे देश इंग्लैंड में
they have outlawed, they have banned hunting with dogs.
उन्होंने कुत्तों के साथ जाकर शिकार करना बंद करवा दिया है.
For centuries, farmers and people in rural areas, they have ridden horses, they've taken dogs, and they've hunted foxes that kill the chickens and all this kind of thing.
सदियों से इंग्लैंड में लोग जो हैं अपने घोड़ों पर बंदूक के साथ और कुत्तों के साथ जाकर लोमड़ियों का शिकार करते थे.
Now that is outlawed.
अब वो कर नहीं सकते.
So if one weekend some men go out with horses and they kill a fox,
अगर एक मतलब एक शनिवार के दिन कोई लोग घोड़ों पर जाकर एक लोमड़ी को मार दिए,
Monday morning,
सोमवार की सुबह
headline news in the newspaper,
समाचार पत्र का मुख्य समाचार होता है,
and all the people, well, the small minority groups, oh, the poor fox, what about the animals' rights, all this kind of thing.
और बहुत से लोग आएंगे कि अरे क्या इन जानवरों का कोई अधिकार नहीं है, ये कहकर बड़े बड़े हल्ला मचाने लग जाते हैं.
And yet every week,
और लेकिन फिर भी हर सप्ताह,
every week,
हर सप्ताह,
we are killing 1,000 unborn infants in the womb who are perfectly healthy, but their mother doesn't want them.
हम कम से कम 1,000 बच्चों को उनकी माँ के कोख में ही हत्या कर देते हैं. वो जो बाहर, अगर उनकी माँ के कोख से बाहर आए, बलवान और बलशाली बच्चे होंगे.
What has happened to a society that will have a riot because of a fox?
अब देखिए वो समाज का क्या हो गया जो एक लोमड़ी के मरने पर इतना हल्ला मचा रहे थे.
But not care that we are slaying our children before they're born.
लेकिन हम इसके बारे में नहीं सोचते कि हम हजारों बच्चों को उनकी जन्म के पहले ही माँ के कोख में मार डाल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं.
That is the wickedness of this world.
ये है कि ये पृथ्वी, ये संसार कितना दुष्ट होता जा रहा है.
Men will turn a blind eye when the man of sin is eradicating people.
और जब ये पाप का मनुष्य जब लोगों को धीरे धीरे खत्म कर रहा है, लोग अपनी आंखों को बंद रखेंगे.
They will all be looking at the fact that now Israel is dwelling in peace and safety.
तब वो उनका ध्यान बस इसमें रहेगा कि देखो इसराइल में और उस प्रदेश में कितनी शांति है, वो सुरक्षित है.
They've rebuilt their temple.
और उन्होंने मंदिर को बना लिया है.
They have disbanded their armed forces.
और उन्होंने अपनी सेनाओं को भेज दिया वापस.
They are now totally reliant upon the guarantee of security that has been given to them by this Western leader.
अब ये पश्चिम का जो शासक है, इन्होंने उनको जो सुरक्षा प्रदान किया है, जो गारंटी दिया है, उस पर वो विश्वास रख रहे हैं.
But you see, the heart of man hasn't changed.
लेकिन आपको मैं बता दूं, मनुष्य का हृदय कभी बदलता नहीं.
And hateful eyes are looking at Israel from the north.
और उत्तरी ध्रुव से घृणा से भरी हुई आंखें इसराइल की ओर देख रही हैं.
They cannot bear to see Israel prosperous.
वो इसराइल की उन्नति को सहन नहीं कर पा रहे हैं.
Cannot bear to see them in blessing and peace and safety.
और इसराइल को सुरक्षित, इसराइल पर आशीषों को वो देखकर सहन नहीं कर पा रहे हैं.
So Ezekiel tells us that they will confederate these nations.
इसलिए इज़ेकियल हमें याद दिलाता है कि ये सारे जो राष्ट्र हैं, वो एक 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 साथ आ जाएंगे.
Tells us who some of them are.
और वो कहता है कि उनमें से कुछ कौन से होंगे.
He mentions countries like Persia, Iran.
उन्होंने ईरान के बारे में कहा है.
And Tagama, Turkey.
और उसने तुर्की के बारे में कहा है.
गोमर, जर्मनी.
जर्मनी के बारे में कहा है.
एंड सीरिया.
और सीरिया के बारे में कहा है.
एंड द नेशंस दैट ही नेम्स आर टुडे नेशंस दैट आर ऑल सेंटर्स ऑफ इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म.
और हम जानते हैं कि जिन राष्ट्रों का उसने नाम लिया है, वहां पर इस्लाम का फैलाव बहुत ज्यादा हो गया है और कठोर इस्लाम को वहां पाते हैं.
इट सीम्स दैट दैट आर्मी दैट कम्स फ्रॉम द नॉर्थ टू अटैक इज़राइल इज नॉट पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट्स रिलीजियसली मोटिवेटेड. इट्स द मुस्लिम वर्ल्ड नाउ डिटरमिन्ड टू फाइनली वाइप आउट इज़राइल.
इसलिए जो सेना उत्तरी ध्रुव से आने वाली है, उनका कोई राजनीतिक मकसद नहीं है, लेकिन उनका धार्मिक मकसद है. वो इस्लामिक शक्ति है जो इसराइल को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहते हैं.
It is interesting to note that that army of all the armies in the tribulation period.
और यह बड़ा रोचक बात है कि उस पीढ़ा के दौर में जो सारी सेना है, उससे भी ये जो सेना होगी.
Of that army it says that God will destroy them upon the mountains of Israel.
उस सेना के बारे में परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर स्वयं उनका नाश करेगा.
He won't use a human agency. He won't use another army of the nations of men to destroy them.
वो लोगों की एक सेना का उपयोग नहीं करेगा कि उनको हरा दे.
God will do it directly.
परमेश्वर स्वयं उनका नाश करेगा.
With earthquake.
यहां पर हम देखेंगे कि भूकंप आ जाएगा.
With fire from heaven.
स्वर्ग से आग गिरेगी.
And God will destroy them.
और परमेश्वर उनका नाश करेगा.
And that will be the end of Islam as a world power.
और उस समय इस्लाम का एक विश्व शक्ति के रूप में खात्मा हो जाएगा या समाप्ति हो जाएगी.
That I judge will be in the middle of the tribulation period.
मैं यह आशा करता हूं, विश्वास करता हूं कि वो ये महापीड़ा काल के दौर के मध्य भाग में होगा.
But it will create alarm.
लेकिन इससे एक लोगों में एक दहशत आ जाएगी.
And it will provide the excuse for the Gentile world ruler whose seat is in Europe somewhere, maybe Rome.
और तब ये जो अन्य जातियों का शासक है जिसका स्थान शायद रोम में होगा जहां से वो अधिकार रखेगा.
To transfer his seat of power from there to Jerusalem.
तब वो अपना जो सिंहासन है वहां से रोम से हटाकर वो यरूशलेम में ले आएगा.
It will be under the pretext that we are responsible for your safety, Israel.
वो इस प्रकार से कहेगा कि देखो इसराइल तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं जिम्मेदार हूं.
So now he will come and he will establish his seat in Israel.
इसलिए वो अपना जो अधिकार का स्थान है सिंहासन इसराइल में स्थापित करेगा.
I expect he will claim credit somehow for the overthrow of the Islamic world.
और इतना ही नहीं वो एक प्रकार से कहेगा कि इस इस्लामिक शक्तियों को मैंने समाप्त किया है.
Now the world doesn't just like him.
अब संसार उससे उतना प्रेम नहीं करता.
The world worships him. The world will worship him.
अब लोग प्रेम ही नहीं कर रहे उसकी आराधना करने लग गए.
The man who can solve the social ills.
और जो मनुष्य सामाजिक जो बुराइयां उसका हल उसके पास
who
है.
Who can solve the Middle East problem.
जिसने मध्य पूर्व की सारी समस्याओं का हल ढूंढा है.
Who can at last rid the world of the fear of this Muslim system.
और इतना ही नहीं जिसने सारे संसार को मुसलमानों की इन ताकत से छुटकारा दिया है.
We will follow that man.
हम उस मनुष्य के पीछे जाएंगे.
We want to keep that man.
हमें वो मनुष्य चाहिए.
And people will be prepared to worship that man.
और यहां तक कि इन सारी बातों को लेकर देखकर लोग उसकी आराधना करेंगे.
And then suddenly,
और अचानक
suddenly there is some kind of assassination attempt on him.
और उसको खत्म करने के लिए प्रयास किया जाएगा.
Now verse 3 of Revelation 13, I saw one of his heads as it were wounded to death.
प्रकाशित वाक्य 13 उसके 3 में हम ऐसा पढ़े, तब मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव देखा मानो उससे मरने पर हो.
Some suggest that this is really a revival not just of the Roman Empire but of them having an emperor, one man in charge.
कुछ लोग इस प्रकार से विचार रखते हैं कि ये रोमी साम्राज्य की एक आरंभ का ही चित्र है, लेकिन एक रोमी सम्राट को भी उभरते हुए हम देख पाएंगे.
No, I respect that opinion.
ये बातों को मैं सम्मान करता हूं, ये जो विषय है उसका मैं सम्मान करता
हूं. But if we turn to Revelation 17.
लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में आएंगे.
You need water, brother?
Oh, thank you.
In Revelation 17, where the beast is referred to again.
प्रकाशित वाक्य 17 में फिर से उस पशु के बारे में कहा गया है.
Verse number 8.
पद 8.
The beast that thou sawest was and is not, and shall ascend out of the bottomless pit, and go into perdition.
जिस पशु को तूने देखा वह था तो, परंतु अब नहीं है, वह अथाह कुंड से अपने विनाश के लिए निकलने वाला है.
That's four things.
चार बातें.
He was.
जो था.
So now that's the first half of the tribulation period.
वो महापीड़ा काल के वो पहले भाग को हम वहाँ पर देखते हैं.
And he is not.
लेकिन अब वो नहीं है.
Some attempt is made on the life of this man.
इस व्यक्ति के ऊपर हमला बोला गया है.
And it will be so seemingly definite that he must have perished.
और ये इतना निश्चित है कि उसका नाश हो गया है, वो मृत्यु हो गई है.
I don't know whether by gun or by bomb or by what means.
मुझे नहीं मालूम बम गिरा के या गोली लगकर ये बातें हो रही है.
The whole world will assume he is not. He's gone.
सारा संसार ये मान लेगा कि वो नहीं है.
And suddenly he'll appear again.
और अचानक वो दिखाई देने लगेगा.
What is the devil doing now?
अभी शैतान क्या कर रहा है?
He is now another counterfeit. It is the counterfeit of the resurrection of the Lord Jesus.
अभी वो एक दूसरे नकली भाव छाया को ला रहा है यीशु मसीह के पुनर्जी उठने के.
The devil cannot give life.
ये जो शैतान है वो जीवन नहीं दे सकता,
but he can energize.
लेकिन वो ताकत दे सकता है, शक्ति.
Now, two things have come together here.
अब देखिए दो बातें यहां एक साथ आई है.
Because in the years of his increasing power and dominance,
कि उसका जब सामर्थ्य और ताकत इन वर्षों में बढ़ रहा था,
this politician has become ready to believe that he himself is God.
ये राजनीतिज्ञ ऐसा सोचने लग गया कि अब मैं ही परमेश्वर हूं.
There's nothing he can't do.
ऐसा कोई भी बात नहीं है जो मैं कर नहीं सकता.
Everything he touches succeeds.
जो बात जिन बातों में उसने हाथ लगाया वहां सफलता.
Everybody wants him.
सब लोग उसे चाहते हैं.
Even events he doesn't control are all falling into his lap to promote him.
लेकिन ऐसे भी परिस्थितियां जिसके ऊपर उसका अधिकार नहीं है, नियंत्रण नहीं है, वो भी उसके नियंत्रण में आ रही है.
And he will prove that a man cannot bear the glory of dominion.
और वो इस बात को साबित कर देगा कि एक मनुष्य जो अधिकार है जो दिया गया है उसके उस भार को उठा नहीं सकता.
There's only one who can.
सिर्फ एक ही मनुष्य उस भार को उठा सकता.
That's the man of Zechariah 6 who is called the branch.
और वो जकरयाह छठवें अध्याय में जो डाली कहकर कहा गया वो मनुष्य है.
The Lord Jesus.
वो यीशु मसीह के सिवाय और कोई नहीं.
And Zechariah says he shall bear the glory.
और जकरयाह कहता है कि वही महिमा को उठाए रखेगा.
Won't corrupt him. It won't corrupt him. Change him.
और महिमा उसका नाश और जो अधिकार उसका नाश नहीं कर पाएगा.
Because he's the sinless son of God.
क्योंकि वह पाप रहित परमेश्वर का प्रिय पुत्र है.
He's the only man who can bear the glory.
और वही एक है जो इस महान महिमा को उठा सकता है.
I don't know what kind of private deal this man of sin makes with the devil.
मुझे ये नहीं मालूम कि ये पाप का मनुष्य शैतान के साथ किस प्रकार के संधि में आता है.
But a man who rejects the true and living God.
लेकिन एक मनुष्य जो जीवित और सच्चे परमेश्वर का त्याग करता है,
leaves himself ready to be used of the devil.
अब वो शैतान के अधीन में अपने आप को कर दिया कि शैतान उसका उपयोग करे.
And this godless politician,
और ये राजनीतिज्ञ जो ईश्वर भक्त नहीं है,
who has seemingly died,
जो ऐसा लगता है कि वो मर गया,
he now ascends out of the pit.
अभी अचानक वो कुंड से बाहर आता है.
It's a description of a man who has now become satanically energized.
अब एक ऐसा एक पुरुष का एक व्यक्ति का चित्र है जो शैतान की शक्ति के द्वारा जीवित हो गया.
And everything changes.
और सब कुछ बदल गया.
The smile on the face is gone.
उसके चेहरे में जो मुस्कुराहट था वो चला गया.
He sets up an image in the temple.
वो परमेश्वर के मंदिर में एक मूर्ति को रखता है.
And now this other beast of Revelation 13 emerges out of the land. I suspect it will probably be the Prime Minister of Israel.
और प्रेरितों के प्रकाशित वाक्य 13वें अध्याय में दूसरा एक पशु को उस भूमि में से उठकर आते हुए देखते हैं. मुझे ऐसा लगता है ये इज़राइल का प्रधानमंत्री होना चाहिए.
He and the world ruler become as close.
ये प्रधानमंत्री और जो विश्व शासक है वे एक हो जाएंगे.
As close as the Holy Spirit and the Lord Jesus are together.
जैसे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के बीच में जो संगति है वैसा.
And this man is now going to be promoting the worship of the world ruler.
और यह जो व्यक्ति होगा, यह जो व्यक्ति होगा, वो विश्व शासक की आराधना करने के लिए लोगों को प्रेरणा करेगा.
Now if that means they're going to worship him, they can worship no one else.
इसका यह अर्थ हुआ कि अब वो उसका ही आराधना कर सकते हैं, किसी और की आराधना नहीं.
So Revelation 17 speaks about the world of false Christendom.
इसलिए प्रकाशित वाक्य 17 में एक झूठे मसीह जगत को हम देखते हैं.
The Church of England.
और जो इंग्लैंड का जो चर्च है.
Catholicism.
और जो कैथोलिक चर्च है.
A system that is foul and vile and corrupt in every way.
एक ऐसी प्रणाली जो पूर्ण रूप से भ्रष्ट है.
We now have archbishops in Africa.
अफ्रीका में आर्चबिशप्स हैं.
Who are telling the Archbishop of Canterbury in England?
जो इंग्लैंड कैंटरबरी के जो आर्चबिशप्स ऐसा कहते हैं.
That he should not have homosexual priests in the church.
कि तुम्हारे यहाँ समलैंगिक जो पुरोहित नहीं होना चाहिए.
And he won't do anything about it.
और लेकिन यहाँ इंग्लैंड में कोई कुछ नहीं करता.
This is the world of Christendom.
आज विश्व मसीही जगत ऐसा हो गया.
They piously name the name of God and His Christ.
और वो बड़े भक्ति के साथ परमेश्वर उसके पुत्र का मसीह का नाम लेते हैं.
And underneath in doctrine and practice are absolutely vile.
लेकिन हम पढ़ते हैं उपदेशों में और प्रायोगिक जीवन में पूर्ण रूप से प्रभु के विरोध में.
This is the great whore of Revelation 17.
और ये परमेश्वर के वचन में कही गई वो वेश्या है.
And it is riding along with the beast.
हम देखते हैं कि ये इस पशु के साथ उठकर आ रही है.
They even believe in their stupidity that they are somehow controlling the beast.
और ऐसा लगता है कि वो इस पशु पर नियंत्रण रखाए हुए हैं.
God having dealt with the Islamic world.
परमेश्वर इस्लामिक राष्ट्रों के ऊपर काम करने के बाद.
The beast will then turn round and deal with the world of Christendom.
अब ये जो पशु है ये मसीह जगत की ओर मुड़ेगा.
And the churches will be burned.
और कलीसियाएं जलाई जाएंगी.
And the priests slain.
और बहुत सारे पुरोहितों को मार दिया जाएंगे.
He will be saying to the world, "What do we need all this religion for?"
वो लोगों से कहेगा कि हमें इन धर्मों की क्या आवश्यकता है.
Religion brought us all our problems.
और ये धर्म हमारे जीवन में कई परेशानियों को लेकर आए हैं.
Religion brought us 9/11.
और धर्म के कारण देखो 9 सितंबर जो 11 तारीख को जो समस्याएं वो आई.
Religion brought us the terrorist attacks.
और देखियो धर्म के कारण आतंकवादियों का हमला हमारे देश
पे हुआ. Islam is gone.
देखो अब जो इस्लाम चला गया है.
Now Christendom is gone.
अब देखो मसीह जगत भी चला गया.
There's only one other religion that has been causing trouble.
अब एक और धर्म है जो परेशानियों को ला रहा है.
We'll get rid of the Jew.
हम यहूदियों से भी अलग हो जाते हैं.
And the covenant will be broken.
और हम पढ़ते हैं वाचा वहां तोड़ा जाएगा.
And then according to Matthew 24,
और मत्ती 24 के अनुसार
the great tribulation begins.
और महापीड़ा का दौर शुरू हो जाएगा.
7 years is tribulation.
7 बरस का पीड़ा का काल.
The last half is great tribulation.
और जो उसका दूसरा भाग है महापीड़ा काल होगा.
And so the man of sin becomes satanically energized. The false prophet demands that everybody worship him.
इसलिए पाप का मनुष्य शैतान की शक्ति से भरपूर हो जाएगा और जो भविष्यवक्ता है झूठा भविष्यवक्ता है वो कहेगा कि आओ सब इसकी आराधना करें.
They will demand that people wear a token of their allegiance to him to show they are a devotee of Satan's man.
वो चाहेंगे कि हर एक व्यक्ति शैतान के भक्त बन जाए.
They will have to wear a number. A mark of the beast.
और उस भक्त बनने के सूचक के रूप में उन्हें एक संख्या अपने अपने शरीर पर लेना होगा.
666.
666.
And if you don't wear that mark of the beast, you will be slain.
अगर तुम्हारे ऊपर ये छाप नहीं होगा.
One of the wonderful things is that God is going to take out of every tribe of Israel except Dan.
एक बड़ा ही रोचक बात जो होने वाली है कि परमेश्वर इसराइल के सारे जो कुल हैं दान को छोड़कर उनके अलावा
12,000 Jews
12,000 यहूदियों को वो चुनेगा.
12 times 12 144,000
12 144,000.
If the man of sin is going to put his mark upon the people of the world.
अगर ये जो पाप का मनुष्य है संसार के लोगों के ऊपर अपनी छाप को लगाएगा.
Then God is going to put a mark upon his people.
तब परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर भी एक छाप को लगाएगा.
God seals 144,000 people in Revelation 7.
और प्रकाशित वाक्य 7 में पढ़ते हैं परमेश्वर का जो छाप होगा 144,000 यहूदी होंगे.
And at the end of Revelation 14, in Revelation 14,
और प्रकाशित वाक्य 14 के अंत में
the end of the great tribulation,
और जब महापीड़ा दौर का अंत होगा
those 144,000 are still there.
और 144,000 लोग वहां पर फिर तब भी रहेंगे.
Now, this is not the faithful remnant.
ये जो विश्वास योग्य जो बचे हुए लोग नहीं है.
That's a different company, most of whom will die.
वो एक दूसरा झुंड है.
This is a select company whom God seals.
ये एक ऐसा छोटा सा झुंड है जिसका चुनाव स्वयं परमेश्वर ने चुना है और छाप लगाया है.
Now let me just point out to you, the Bible does not say that they preach.
मैं आपको एक सत्य बता दूं, बाइबल में कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि ये जाकर प्रचार करेंगे.
They probably do, but the Bible doesn't say that they do.
ये शायद करेंगे, लेकिन बाइबल में हम नहीं पढ़ते कि वो इस काम को प्रचार करेंगे.
In fact, the emphasis on the in the Bible is the fact that here's 144,000 people who simply survive.
ये बाइबल में बस एक ही सत्य सामने उभर कर आती है कि ये 144,000 लोग बच गए.
They are invulnerable, they are invincible, they cannot be harmed.
इसका ये अर्थ हुआ कि उनको कोई मार नहीं सकता, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता.
And the false prophet will be so vicious in his attempts to get them to bow the knee and take the mark of the beast.
और जो झूठा भविष्यवक्ता होगा वो इतना क्रोध से भर जाएगा, प्रयत्न करेगा कि ये लोग इस पाप के मनुष्य के छाप को अपने ऊपर ले.
The thugs and the special forces will come.
और तब उनके जो विशेष सेनाएं आएंगी.
They will try and beat them, they will try and shoot them, they will try and destroy them any way they can.
वो उनको मारेंगे, उनको गोली लगाएंगे, सब कुछ करेंगे वो.
They can't hurt them.
लेकिन उनको कुछ भी नहीं होगा.
Visualize that.
जरा सोच के देखिए,
इमेजिन इट,
अपने मनो में जरा विचार करके देखिए उस दृश्य को.
दे आर कमिंग टू ट्राई एंड एनफोर्स द विल ऑफ द बीस्ट एंड द फॉल्स प्रॉफिट.
यहां पर लोग आ रहे हैं कि पाप के मनुष्य और इस झूठे भविष्यवक्ता की इच्छा को इन लोगों के ऊपर पूरा करे.
नो बॉम्ब, नो बुलेट, नो बीटिंग कैन टच एनी ऑफ दीज 144,000 पीपल.
लेकिन देखिए, इन 144,000 लोगों पर ना बम का असर होता है, ना मार का असर होता है, ना गोली का असर होता है.
एंड इट विल बी सेइंग टू अ वर्ल्ड,
तब ये संसार को ये बताएगी,
गॉड इज ऑन द थ्रोन,
कि परमेश्वर, ये लोग ये बताएंगे कि परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है.
गॉड इज इन कंट्रोल,
परमेश्वर सारी बातों पर नियंत्रण लगाए हुए हैं.
एंड मेनी विल कम टू रिपेंटेंस,
और बहुत से लोग पश्चाताप करेंगे.
एंड अदर्स विल सेट देयर माइंड्स एंड हार्ट्स अगेंस्ट गॉड,
और बहुत से लोग परमेश्वर के विरोध में उठेंगे.
एट द एंड ऑफ इट ऑल ऑफ कोर्स,
लेकिन इन सब के अंत में,
स्क्रिप्चर सेज दैट व्हेन द लॉर्ड जीसस रिटर्न्स टू द अर्थ टू रेन,
पर पवित्र शास्त्र कहता है प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर अपने राज्य की स्थापना के लिए जब आएंगे,
those two despicable men, the beast and the false prophet,
तब ये जो बुरे मनुष्य हैं, जो पाप का मनुष्य और झूठा भविष्यवक्ता,
they are the first to be cast into the lake of fire.
इन दोनों को सबसे पहले आग की झील में फेंक दिया जाएगा.
Well, it's a big subject for an hour.
एक घंटे में इतने बड़े विषय को बोलने के लिए ये बहुत बड़ा विषय है.
And I've taken 10 minutes more than an hour.
और इसलिए मैंने आपके समय में से 10 मिनट और ले लिया.
And there are many details we haven't even touched.
और बहुत सारे विवरणात्मक बात हैं जिनको हमने छुआ भी नहीं है अभी तक.
But that I judge, it's my best understanding of the word of God for myself, is that that is how the man of sin and the false prophet are going to emerge and how they're going to rule.
और ये सत्य जो मैंने आपके सामने रखा है पवित्र शास्त्र के मेरे अध्ययन से, जो वो बातें मेरे सामने खुलकर आई कि कैसे ये झूठा भविष्यवक्ता और पाप का मनुष्य उभर कर आने वाले हैं. और मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इन वचनों को हमारे जीवन में आशीष करके देगा.
आमेन. थैंक यू बाबा.
Thank you, brother, for your wonderful teaching. Also, brother, we thank you for your translation. Yesterday we have heard that